You are listening to Radio Sai Global Harmony. Please visit our website radiosai.org to listen to our free internet streaming service. On this website, you can access audio streams. The first three are Asia Stream, Afri Stream and Ameri Stream, which offer you programs in the languages common to these geographic regions. The other two streams are Bhajan Stream and Discourse Stream. Click on the Bhajan Stream to listen to a Sai Bhajan at any time of the day. Similarly, to listen to the divine voice of Bhagavan Sri Satya Sai Baba 24 hours a day, 7 days a week, please log on to the Discourse Stream. Just log on to radiosai.org and experience the divine love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. For any inquiries, please email us at listener@radiosai.org.
Om Shri Sai Ram. Greetings, a very good morning and a warm welcome to today's Thursday Live. Well, dear listeners, you are tuned to Asia Stream of Radio Sai Global Harmony, bringing you the message of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Till now you heard this segment, Morning Glory, and now I am Raghu from Team Radio Sai hosting the segment, Service, Love in Action. And I'm having the pleasure of accompanying you for next 1.5 hours, that is till 12:30. And today, as always, I am joined by Brother Sunil, who will be helping me in playing the files from the audio control. And at the very outset, let us all collectively offer our most humble and reverential pranams at the lotus feet of our most beloved Bhagavan, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Today is 8th of August and the weather here at Prashanthi Nilayam Ashram is quite cool and pleasant. Right now outside it's slightly cloudy, but later in the day it sometimes becomes sunny and again it goes back to cloudy, and sometimes there is few drizzles also. It looks as if the sun god and clouds are playing the game of hide and seek or something like that. So the temperature right now may be around 23 degrees Celsius and later in the day it goes to about 32 degrees Celsius. So as I said, this is a segment, Service, Love in Action, and in this segment we bring you accounts of Swami's love and our love for Swami translating into service to humanity. And today in this segment I'll be playing for you few conversations that we had with the members of the Seva Dal who had come here to Prashanthi Nilayam for Prashanthi Seva last month from the North Indian state of Himachal Pradesh. So this conversation I'll be playing for you in a while from now. So let's begin this segment by me playing for you few bhajans, Sai bhajans, and these Sai bhajans are from the latest volume of the Radio Sai album Nada Brahmam, which is a Sai Blossom product. This latest volume, volume 7, will be released in a couple of weeks from now. So let's listen to this melodious couple of Sai bhajans.
Bal Gopala, Sai Bal Gopala.
Thank you.
ವಾಸುದೇವನಂದನ ಗೋಪಾಲ ವಾಸುದೇವನಂದನ ಗೋಪಾಲ ಯಶೋದನಂದನ ಗೋಪಾಲ ಯಶೋದನಂದನ ಗೋಪಾಲ
ಜಯ ಸಾ
Listeners, welcome once again to today's Thursday Life. This is the segment service Love in Action, and I am Raghu from Team Radio Sai. Talking about, well, dear listeners, till now what you heard were a couple of bhajans from the latest Sai Blossom product, the album Nada Brahma Volume 7. In fact, this Volume 7 will be released in a couple of weeks from now. To know about the various Sai Blossom products, please visit the website saiblossom.org. Well, dear listeners, the time right now in our studio is 11:15, and it's a quite pleasant and cool morning here at Prashantinilaya Ashram, and this is a segment Service Love in Action. So talking about service, once in the year 1985, which was the year of Swami's 60th birthday, Swami went to a village called Amegunda Palayam, which is about 20 kilometers from Puttaparthi. So Swami, in a discourse given to the villagers and to the students who went with him, said, and I quote, "Veda says that God has thousands of eyes. India has thousands of villagers, and those villagers are my eyes. So dear students, no matter where you are, make sure you protect my eyes." Unquote. So this is what Swami said. That is, India's villages are like Swami's eyes. And Swami tells his students to protect his eyes. That is, to protect India's villages. So Swami has always given a lot of importance to Grama Seva, that is village service. So inspired by this, devotees everywhere in India and around the world are undertaking service activities wherever they are in whatever capacity they can. Well, every fortnight from various parts of India, Swami's devotees come to Prashanthi Nilayam for rendering Prashanthi Seva here at Prashanthi Nilayam Ashram. So last month, the Sevadal contingent who had come were from the North Indian state of Himachal Pradesh. In fact, right now the Prashanthi Seva which is going on are from the state of Delhi. So in fact, last week on Thursday live, I had with me the state president of the North Indian state of Himachal Pradesh, Professor Shyam Sundar, and he spoke to us about the various service activities that Swami's devotees are undertaking in the state of Himachal Pradesh. After that, we had recorded few conversation with the few Sevadal members who had come here to Prashanthi Nilayam. In fact, dear listeners, the Sevadals who come from the North Indian state of India are more fluent in the language Hindi. So we recorded this conversation in the language Hindi, and in conversation with them is Radio Sai's Karuna Munshi. So let's listen to the first Sevadal of whom we had a conversation with, and he is Mr. Anurag Sood from the district Kangra in Himachal Pradesh. So let's listen to him.
Sai Ram.
Sai Ram.
आपका रेडियो साई में बहुत बहुत स्वागत है.
थैंक यू साई राम.
आप हमें बताइए, आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है?
मैं हिमाचल प्रदेश से, जिला कांगड़ा से आया, और मैं अनुराग सूद.
अनुराग जी, आप कई वर्षों से आते रहे सेवा दल ड्यूटी पे?
हाँ जी, मैं 2005 से लगातार आ रहा हूँ.
अच्छा.
लेकिन बचपन में जो है वो बाल विकास की कक्षाएं मैंने अटेंड की हैं. बचपन से भगवान से जो मैं जुड़ा हूँ.
हिमाचल में आपके गाँव में अटेंड करते थे बाल विकास?
वहाँ पे प्रोफेसर शिव कुमार जी थे, वो लेते थे बाल विकास की कक्षा, तो उनके पास हम अटेंड करते थे.
2005 से काफी वर्ष हो गए आपको आते हुए, अब 8 वर्ष. क्यों आते हैं आप हर साल?
क्योंकि भगवान की इतनी ग्रेस मिलता है, यहाँ पे काम करके इतना आनंद आता है, इतनी एनर्जी मिलती है. इस स्टेज पे उस एनर्जी को छोड़ पाना पॉसिबल नहीं है. मतलब बाकी सब काम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल कि इस सेवा के लिए पोटापति ना आए.
हमने सुना है लोगों को ऐसा कहते हुए कि वो जब ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसमें उनको एनर्जी मिलती है, उनसे उनको ग्रेस मिलती है. आप तो कह रहे हैं सेवा करने से इतना श्रम करना पड़ता है आपको, इतनी मेहनत का काम है.
नहीं, ये उनका एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरा उस लाइन में नहीं है. मैं यहाँ सेवा कर, जैसे मैं को यहाँ अन्नदान में काम करते हैं, इतना काम करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, शाम 4 बजे तक लगातार, मतलब विदाउट ब्रेक काम होता है. लेकिन एक भी सेकेंड, मतलब 4 बजे, मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे स्कूल में होता था कि छुट्टी होगी हम मस्ती करेंगे, तो उस टाइम भी ऐसे लगता है कुछ और काम मिल जाए तो इतनी एनर्जी मतलब रहती है. हालांकि सब वहां पे सुबह 4 बजे कुकिंग करना है, फिर गांव में जाके वो सर्विस करना है, आके वो बर्तन सारे साफ करने हैं, तो वैसे अगर रूटीन लाइफ में देखें तो हम थक जाएंगे बहुत. लेकिन यहाँ पे 4 बजे जब ऑफ करते हैं तो मन में पूरा 100% ऐसा रहता है कुछ और काम मिल जाए तो बढ़िया रहेगा. ये स्वामी की ग्रेस की वजह से, एनर्जी की वजह से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है.
बिल्कुल सही कहा. हिमाचल में क्या करते हैं आप?
हिमाचल में हमारी काफी एक्टिविटीज चलती हैं, जैसे एक साल में हम कम से कम जो वो अपने, मैं तहसील की बात करूंगा
जी,
तहसील में कम से कम हम 4-5 लड़कियों की जो वो शादी करते हैं जो गरीब परिवार से है, वहां पे स्टडी सर्कल हम रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं.
हिंदी में स्टडी सर्कल आप लोग करते हैं?
अच्छा. और उसके बाद जो है, जैसे पुराने जो मंदिर हैं वहां पे डिसाइड करते हैं कि आज फलाने, मतलब इस महीने उस मंदिर में जाना है, तो पूरे का पूरा हमारा यूथ जो वो सेवा दल वहां पे जाता है, पूरा मंदिर साफ सफाई करते हैं, धोते हैं सारा का सारा, और फिर यूथ कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पे, मतलब बड़े बड़े, मतलब जो अपने संगठन के लोग हैं उनको मतलब कॉल करते हैं हम उनको लेक्चर डिलीवर करने के लिए. फिर एक जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे फ्री ब्लैंकेट सेवा है कि वहां जो भी मतलब पेशेंट्स आते हैं, गरीब हैं, उन सबके अटेंडेंट्स को जो वो हम फ्री कंबल देते हैं, फ्री क्रशेज वगैरह, मेडिकल एड वगैरह जो है वो सारे का सारा मतलब हमारा जो वो संगठन की तरफ से उनको फ्री रहता है. मेडिकल कैंप जो वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप जो वो कम से कम हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 7 से 8 जो है वो हर साल कम से कम लगते हैं.
आपके यहाँ तो काफी सेवा हो रही है, आपका व्यवसाय क्या है, आप इतना समय कैसे निकालते हैं?
मैं टीचर हूँ.
क्या पढ़ाते हैं आप?
मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ.
किस कक्षा में?
प्लस वन प्लस टू और भगवान की ग्रेस की वजह से पिछले 4 सालों से कम 40 स्टूडेंट जो मेरे हर साल आते हैं यहाँ पे।
देखिए स्वामी ने कहा है कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है एक तो डॉक्टर और दूसरे शिक्षक सबसे ज्यादा इफेक्टिवली परिवर्तन ला सकते हैं, तो आपका उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है।
मैं यही आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं स्वामी की ग्रेस को देखता हूँ तो कई बार सोचता हूँ कि भगवान क्या, जैसे आज तक मतलब कोई भी स्टूडेंट 35 to 40 स्टूडेंट हमारे साथ आते हैं, कोई भी स्टूडेंट कभी कोई बीमार नहीं हुआ, कभी किसी को चोट नहीं लगी, हालांकि सब इतना जोरदार काम करते हैं। और बहुत सारे मैं देखता हूँ कि जो हमारे वहां से नियर बाई मतलब पेरेंट्स के साथ मतलब जो बच्चे आ रहे हैं वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं जो मतलब बिना पेरेंट्स के आते हैं उनको कभी भी आज तक भगवान ने मतलब कभी कुछ नहीं होने।
जो सूद सर के कहने पे आते हैं वो लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं सर।
नहीं ऐसा तो नहीं है, तो भगवान की प्रेरणा उनमें होती है।
तो आप उन्हें क्या बोलते हैं, आप कैसे प्रोत्साहित करते हैं उनको आने के लिए? ये तो बहुत ही बड़ा निर्णय है कि घर छोड़ के पहली बार इतना दूर दक्षिण भारत अपने टीचर के साथ जाना कोई छोटी बात नहीं है। कैसे आप उनको समझाते हैं आप किस लिए जा रहे हो?
एक्चुअली अब ऐसा है कि क्लास में भगवान की बात होती रहती है और एट प्रेजेंट ऐसा चला है कि पहले मुझे कोशिश करनी पड़ती थी कि पेरेंट्स को बोलना पड़ता था अपने बच्चों को भेजो कुछ ना कुछ वहां पे बच्चे सीखेंगे। अब पेरेंट्स जब मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे को अगले साल आप लेके जाइए
क्यों, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ
यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनमें इतना चेंज होता है, इतना चेंज आता है कि उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं और मेरे पास मतलब आते हैं पेरेंट्स की अगली बार मेरे बच्चे को आप जरूर लेके जाएंगे।
बहुत ही खुशी की बात है,
ग्रेस है,
इतना बड़ा परिवर्तन आना सेवा से। अच्छा हमें आप जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं अन्नदानम की उसके बारे में थोड़ा बताइए।
अन्नदानम की ड्यूटी जो है वो सुबह 4 बजे शुरू होती है, तो ये लड़के लोग वहां पे जाते हैं, फिर वहां पे टमाटर वगैरह कटिंग है, फिर चावल जो है वो बनाते हैं, कुक है वहां पे लेकिन उनका चावल धोने हैं, वो शिफ्ट करने हैं, उसके लिए हेल्प करते हैं, फिर वो पप्पू लोकल पप्पू बोलते हैं दाल को पप्पू बनाते हैं, फिर आलू की सब्जी को ये पल्लम बोलते हैं, पल्लम जो है वो बनाना होता है, तो सारे का सारा काम ये, फिर गाड़ी में वो लोड करना होता है, फिर पर्टिकुलर किसी गांव में मतलब वो जिस गांव में जाते हैं वहां के कन्वीनर को पहले इन्फॉर्मेशन रहती है पूरे गांव में वो जो है वो बताया होता है, तो हर गांव की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है वो इधर पता होता है, उस हिसाब से कुकिंग करके वहां पे सर्विस करते हैं, फिर वापस आते हैं तो वो सारे के सारे बर्तन जो है कुकिंग यूटेंसिल्स हैं अपने वो सारे के सारे साफ करने होते हैं, उसके बाद सारे अंदर जो है वो साफ सफाई करनी होती है, तो ऐसा रहता है। और लेडीज जो हैं वो यहाँ पे 7 बजे आती हैं, लेडीज को सुबह 4 बजे परमिशन नहीं है, लेडीज सुबह 7 बजे आएंगी, वो फिर वो आलू वगैरह की सब्जी काटती हैं सर।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ अपने विचार बांटे और हमें बताया।
साईराम, थैंक यू।
साईराम। सो दैट वॉज मिस्टर अनुराग सूद फ्रॉम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। Mr. Anurag Sood had come here to Prashanti Nilayam as part of Prashanti Seva from the state of Himachal Pradesh last month. So, last month we recorded a conversation with him. This conversation, as you heard, was in the language Hindi. Let me briefly summarize what he spoke with us. So he said, it seems he came to Swami from his, he knew Swami from his childhood as he was a Balvika student. And as far as Prashanti Seva is concerned, he is regularly coming here from the year 2005. Here at Prashanti Nilayam, the Prashanti Seva gives him immense happiness. He says that you get so much of grace of Bhagwan which you don't want to miss. Others may get energy from meditation and such other practices, but it seems he gets the energy by doing Seva here at Prashanti Nilayam. Other than Prashanti Seva, back home at Kangra, Himachal Pradesh, they also do a lot of service activities. It seems they perform marriages in poor families, conduct Narayan Seva, cleaning of temple premises and organize youth conferences. Also conduct a minimum of 8 blood donation camps in their district every year. Anurag Sood is a teacher by profession and teaches physics at plus 2 level. But the best part is, every year he brings 40 students from his college for Seva here. And it is Swami's grace that despite engaged in strenuous jobs, they never had any problem. It seems he tells his students about Swami's love and compassion and motivates the students to see for themselves the activities here at Prashanthi Nilayam. Now the parents of these students themselves approach him to include their ward for Prashanthi Seva. Parents also notice the positive changes in the behavior of their children. So that was Mr. Anurag Sood, and let's listen to Mrs. Kanta Verma, another Seva Dal member from the state of Himachal Pradesh who had come here for Prashanthi Seva last month.
Mera naam hai Kanta Verma, main Solan se aayi hu.
सोलन हिमाचल प्रदेश. वहाँ आप क्या करती हैं, क्या व्यवसाय है आपका?
मैं बैंक में नौकरी करती थी. अच्छा. पर मैंने छोड़ दिया. अभी वो 34 इयर्स का जॉब किया है, उसके बाद मैंने वीआरएस ले लिया.
अच्छा.
और अब मैं होम मेकर हूँ, घर में रहती हूँ.
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कार्य है, होम मेकर होना कोई मजाक नहीं है. काम ही नहीं कभी खत्म होता घर में, है ना. अच्छा, आप कब से आ रही हैं सेवा में?
बाबा के पास मैं 78 से आ रही हूँ, 1978 से.
तो काफी सालों से आप आ रही हैं. क्यों आती हैं आप यहाँ सेवा में?
मैं यहाँ इसलिए आती हूँ कि मुझे बाबा से बहुत प्यार है.
और आप अपना प्यार जताने का तरीका सेवा?
नहीं, मतलब हर जगह ही प्यार करते हैं हम. जब हम घर में हैं तब भी हम प्यार करते हैं
जी.
बस इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. बाबा का घर है, बाबा ने या लीला किया जन्मे या इतना कुछ हो किया, बाबा के लिए आते थे. बिकॉज फिजिकल दर्शन तो यही होता था ना. इंटरनली तो हम जुड़े हुए ही हैं उनसे, हर वक्त जुड़े हुए हैं
जी.
वो हमारा आत्मिक वो है, यहाँ हम फिजिकली जुड़े हुए थे. फिजिकल भी बाबा का उतना ही प्यारा है जितना अंदर से प्यारा है. बोथ, दोनों ब्यूटीफुल है.
और सेवा में आप अभी भी आ रहे हैं? आप तो भगवान शरीर में रहे नहीं.
हाँ जी, हाँ जी, आ रहे हैं. मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा खुद ही कहते थे कि डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दिस 5 फीट बॉडी.
जी,
लोग ये सोचते हैं कि एक 5 फीट की बॉडी है, सिर पे बाल है, ऑरेंज चोगा. आई एम नॉट दिस. और वो है भी नहीं है, ही इज ओमनी प्रेजेंट. हमने तो उनको इतना महसूस किया है हर जगह. जब मैं बैंक में नौकरी करती थी, हर वक्त मेरे साथ होते थे. कोई गलत काम करती थी, कई बार कस्टमर के साथ कुछ गलत इंटरेक्शन हो जाए, मेरे को ड्रीम में आके करेक्ट करते थे, और रात को कि नहीं ऐसा नहीं करना. तो ही इज ओमनी प्रेजेंट, हर वक्त साथ है. बट हम बाबा को प्यार करते हैं, हम हर जगह तो देखते ही देखते हैं, लेकिन हमने शरीर में भी उनको देखा, तो इसलिए हम आते हैं. और अब वो चले गए तो हमारे लिए अब भी वो है. मेरे लिए डेथ कोई मायना नहीं रखता.
सेवा में आप आती?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी.
क्या सेवा कर रही हैं आप इस वक्त कांता जी?
अभी हम जेंट्स कैंटीन में हैं जी. हम बर्तन मांजते हैं वहाँ 4 टाइम. हाँ जी.
और इतना आनंद आपको मिलता है बर्तन मांजने में? दिन में 4 बार बड़े बड़े बर्तन.
हाँ,
इतने सारे
करते हैं. हाँ, और भी लड़कियां लेडीज हैं. टीम वर्क है. हाँ, इट्स टीम वर्क. तो टीम वर्क में बहुत डिवोशन है लेडीज में. बहुत गांव से आई हैं, बट दे आर फुल ऑफ डिवोशन. डिवोशन के लिए कोई डिग्रीज नहीं चाहिए होती.
बिल्कुल
कोई
सही.
कोई स्टेटस नहीं चाहिए होता.
बिल्कुल सही.
ऑल आर सो लविंग. सो बहुत अच्छा है. वेरी नाइस. मतलब अच्छा लगता है.
और आपके परिवार में जो लोग हैं, आप उनको क्या बोल के आती हैं कि मैं हर साल उठ के पुटअप करती जा रही हूँ सेवा में?
नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता. मुझे कोई नहीं रोकता. मुझे कोई नहीं रोकता. वो कहते हैं एंजॉय करो अपने. मेरे बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो कहते हैं एंजॉय करो. मेरे हस्बैंड कहते हैं जाना जाओ. वो कोई मुझे नहीं रोकता.
जब आप वापस जाते हो हर साल नया अनुभव लेके वापस हिमाचल, उन्हें क्या बताते हैं आप यहाँ के बारे में?
मैं मतलब जो मेरे कॉन्टेक्ट में आता है वो अपने आप ही हो जाता है. मतलब जब भी जैसे बात चलती है कोई, ऑटोमेटिक हो जाता है. मेरी फ्रेंड्स ये वो, हमारे लाइफ ही बाबा मय है एक्चुअली. हमारे से कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा. हाँ. ऐसा हमारा और ही स्वामी वाला है. कोई ना कोई बात ये. और एक्चुअली तो अगर जो हमारे अंदर जो हमारी हैबिट्स, हमारा नेचर, ये स्वामी है एक्चुअली.
बिल्कुल.
अंदर हमारे अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए. वो है स्वामी की एक्चुअल डेफिनेशन.
हाँ जी, हाँ जी.
तो नाम रूप से तो परे है स्वामी. किसी भी चीज को मानो, किसी भी जगह जाओ, अनलेस तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो इट्स फ्यूटाइल. कुछ भी नहीं, यूजलेस है. तो बस यही है, अपना नेचर अच्छा होना चाहिए. आदमी के अंदर प्रेम होना चाहिए सबसे बड़ी चीज. कोशिश तो करनी चाहिए एटलीस्ट प्यार को बढ़ाने की, पॉजिटिव एनर्जी की. क्योंकि लाइफ में तो सब कुछ है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है. आदमी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, ना ही एटमोसफेयर सब जगह परफेक्ट होता है. ये सिर्फ बोलने की बातें हैं. बट एक एटलीस्ट हमें इंस्पायरिंग लोगों के साथ कोशिश तो करनी चाहिए रहने की.
और सेवा में आके आपको बहुत सारे इंस्पायरिंग लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. बहुत हर पल सिखाते हैं भगवान. हाँ, सिखाते हैं. देखो मैं बताती हूँ, मैंने अभी सीखा. अभी मैं कैंटीन में बैठी हुई थी तो बाय चांस एक बड़ी ओल्ड लेडी आई. वो बाबा की उम्र की है, 85 साल की. वो कहती है बाबा तो मेरा फ्रेंड है. मतलब एज अ फ्रेंड मानती हूँ बाबा को. कहते मैं यहाँ परमानेंट पोस्ट लेना चाहती हूँ कैंटीन में. तो मेरे को कहते हमारे तमिलनाडु में इतना मुश्किल है सेवा दल का ये स्काफ मिलना, हम हिमाचल में तो हम सब आ जाते हैं, हम मजे से आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। कहते तमिलनाडु में टेस्ट होता है इसका सेवा का, आपको तीन चीजें मिलेंगी, एक तो लेडीज के सैनिटरी नैपकिन, इनको करके जलाओ, दूसरा क्या बोलते ये जूठा बर्तन, ये जो गंद निकालते हैं
जी।
प्लेट तो ठीक है ना, लोग आधा तो प्लेट में जूठा होता है फेंकना, उसको जी, निकालना जी। और तीसरा टॉयलेट क्लीनिंग, आदमी तो खुद भी जाता सोचता है मैं जाऊं टॉयलेट में तो इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन दूसरों के टॉयलेट क्लीन करना। कहते जब ये तीन उनसे मुक्ति मिलती है तब ये स्काफ मिलता है तमिलनाडु में,
टेस्ट पास करना होता है
तमिलनाडु में
इस परीक्षा से गुजरने के बाद।
हमें तो ऐसे ही जिसको चलना चलो, तो कितनी मतलब ग्रेस है, मतलब हमको वैसे समझ नहीं आ रहा, सेवा इज रियली अ ग्रेस ऑफ स्वामी, ये तो फैक्ट है। वैसे इस बार मेरे को ड्रीम में बाबा पहले ही आ गए थे, अभी मैं सोलह नहीं थी, मैं सोच रही थी भाई कोई पता नहीं होता, देर आर मैनी स्टेप बिटवीन कप एंड लिप, कोई पता नहीं चलता एंड तक क्या हो जाएगा, तो बाबा मेरे को ना कैंटीन में दिखे बैठे हुए, फिर मैं समझ गई ब्लेसिंग मिल गई, पहुंच जाएंगे, पहुंच ही गए।
और आप कैंटीन की ही ड्यूटी कर रही हैं, वहीं पे बाबा रहते हैं हमेशा। आपका इतना दृढ़ विश्वास है बाबा में, कभी जब वो अपने शरीर में थे कभी आपका उनसे कोई इंटरेक्शन बातचीत हुई?
हाँ जी, हुई इंटरव्यूज हुए बाबा के साथ, है ना, फिजिकल भी हुए, वैसे तो खैर हर वक्त ही साथ है।
हाँ।
तो फिजिकल तो बाबा ने जब 78 में आई थी तब हुआ था इंटरव्यू बाबा से, तो बाबा ने तब मेरे को ये कहा था कि भाई ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी नॉट फॉर क्वांटिटी, गाय का मिल्क थोड़ा सा भी
वो बेटर है,
बहुत है। हाँ। और गधे का मिल्क कितना हाँ। भी होगा
उसका क्या फायदा,
उसका क्या फायदा, सो ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे,
हाँ।
तो क्वांटिटी क्या करनी है, इट्स क्वालिटी, ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी, ये वर्ड बोले थे बाबा ने। और सबसे पहला तो मुझे ये बोला था कि लिव इन लव, हेल्प अदर्स ऑल्सो टू लिव इन लव, क्योंकि हमको आदत है जोड़ने की। मेरे को जोड़ना अच्छा लगता है सबको,
टीम बिल्डिंग।
हाँ हाँ, लिव इन लव, हेल्प अदर्स ऑल्सो टू लिव इन लव,
बहुत
ये
अच्छा।
पहले शब्द थे उनके, फर्स्ट वर्ड्स।
35 साल बाद आपको याद है, आपके दिल पे एकदम रच के रखा है आपने।
हाँ जी हाँ जी, एक एक चीज याद है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बातें हैं पर वो तो चलो अभी
नहीं, कोई अगर सेवा से रिलेटेड है तो कुछ बताइए।
सेवा से रिलेटेड ये है, मैं 92 में फिर से बाबा ने वो दिया था इंटरव्यू, तो उसमें बाबा ने हमें कहा था एक मंत्र अपने लिए रखो हमेशा, मन में राम हाथ में काम। तो बस वही है, मन में राम हाथ में काम, हमारा तो है ही यही है। मैं तो जुड़ी हुई दिल से हूं एक्चुअली, सच्ची बताऊं मैं तो, इससे बड़ा मंत्र वैसे वाकई कोई नहीं है, मन में राम हाथ में काम।
ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद साईराम कांता जी।
साईराम, थैंक यू सो मच।
साईराम डियर लिसनर्स, सो दैट वॉज मिसेस कांता वर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, एंड शी ऑल्सो हैड कम हियर टू प्रशांति निलयम फॉर प्रशांति सेवा लास्ट मंथ इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। So she told that it seems she was a bank employee for 34 years and took voluntary retirement. It seems she has been coming to Prashanthi Nilayam way back from the year 1978, and she says that Swami's absence now in the physical form is immaterial for her, as Swami himself said a number of times not to identify him with the 5'3" body. He is omnipresent. It seems Swami corrects her from wrong actions by appearing in her dreams now. During Prashanti Seva, it seems she cleans utensils in canteen 4 times a day. She says it's a teamwork, and there are some more ladies who belong to interior villages of Himachal Pradesh doing this work, and their devotion, she says, is exemplary. Her husband and children extend their full support to her for getting involved in service activities. Back home, when she meets friends or relatives, the discussions automatically turn to Swami only. In one word, she says that their life, their actions are molded by Baba's ideals. The positive energy within them is Swami. Well, way back in the year 1978, it seems her family, she and her family got an interview with Baba, and in the interview, Swami advised her to go for quality always. He also said to live in love and help others also to live in love. So that was Mrs. Kanta Verma who spoke to us, telling us about her experience of being a part in the Prashanti Seva. Now let's listen to another Sevadal member. In fact, he is the Sevadal coordinator of Himachal Pradesh, Mr. Sesh Bhushan.
हमें अपना परिचय दीजिए सर.
मेरा नाम शेष भूषण है
जी.
मैं जिला कांगड़ा का, मेरे को भगवान की कृपा से अध्यक्ष बनाया गया है और मैं बाबा के चरणों में शतकोटि नमन करता हूं. सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से ये अपने आप में एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हर वर्ष भगवान यहां पर मेरे को बुला लेते हैं. मैं 1992 से लगातार मैं चलता आ रहा हूं सेवा के लिए. 2004 में यहां आया था, तब पिताजी थोड़े अस्वस्थ थे, तो बाबा का संदेश था कि जब घर में माता पिता स्वस्थ हों तो उनकी सेवा करना, यहां नहीं आना है. बाकी अब तक मैं लगातार यहां पर चलता आ रहा हूं. डॉक्टर श्याम सुंदर जी का नाम अवश्य लूंगा, जिन्होंने हिमाचल में इस दिव्य ज्योति को जगाया है. तब परिस्थितियां काफी बिगड़ थी बहुत ज्यादा, और ये स्कूटर के ऊपर बैठ करके ये लगातार जो थे ये घूमते फिरते थे अपने आप में, और सभी लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेरित किया है इस बात के लिए. क्योंकि हिमाचल एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल दुर्गम पहाड़ियां हैं, बिल्कुल घर लोगों के थोड़े थोड़े क्लस्टर में होते हैं, 10 घर कहीं हैं, 15 कहीं हैं, 20 घर हैं, बसें नहीं चलती हैं, तो ऐसे एरिया के बीच में काम करने का कुछ ज्यादा आनंद आता है. जिला कांगड़ा के बीच में इसमें हमारे पास 32 केंद्र जो हैं वो समिति के रूप में काम कर रहे हैं, और 8 हमने स्कूल जो हैं वो साई के मिशन के हिसाब से अडॉप्ट कर रखे हैं पूरे के पूरे. लगातार हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं और पशुओं के कैंप लगाते हैं. मेरे को सुनने में आया कि इस बार जो 22 तारीख गुरु पूर्णिमा हुई तो हिमाचल का नाम लिया गया कि पशुओं की सेवा के लिए, तो हमारा जिला कांगड़ा उसके बीच में प्रथम है इस बात के लिए जाकर के. यानी कि हम साथ में गरीब बेटियों शादी तो करते करते हैं. साल के हमारे 6 जो हैं वो आंखों के मोतियाबिंद के कैंप लगते हैं, उसमें हम किसी से एक पैसा भी नहीं लेते. मैं डॉक्टर चमन सिंह चौहान जी का नाम लूंगा कि वो बिल्कुल मुफ्त सेवा देते हैं हमें इस कार्य करने के लिए. रादर मैं वो एक अच्छी बात है उनके बारे में कहना. मैडम लाहौल स्पीति काजा के नॉर डिफिकल्ट एरियाज हैं, उस भाई ने अपने सिर के ऊपर ब्रीफ केस उठा करके लोगों के घरों में जाकर के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए हैं. उसने अभी आए होते बेचारे वो, और परसों हमने इकट्ठा ही दोनों ने नमस्कार किया कि भगवान हमें बल देना ताकि हम इस काम को आगे और ज्यादा बढ़ा सकें. यानी कि ऐसे रक्तदान के शिविर की बात मैं जरूर करूंगा मन से. ये युवा शक्ति जो हमारी है, अभी भी 24 अप्रैल को भगवान के आराधना दिवस के ऊपर हमने 65 यूनिट ब्लड के जो है वो डोनेट किए हैं. यानी कि तो हमारा एवरेज 250-300 यूनिट ब्लड का जो है साल का हमारा बन जाता है. इसी प्रकार हम 12-15-16 कैंप जो है जनरल मेडिसिन के लगाते हैं, और जो टिपिकल केसेज होते हैं उनको हम रेफर करके पीजीआई में उनको दिखाने का उपचार भी करते हैं. पीछे वो मिस्टर मैसी जी आए हुए थे न्यूयॉर्क से, वो
जीन मैसी जी,
जीन मैसी आए थे. तो टांडा के हॉस्पिटल जो वहां पे मेडिकल कॉलेज है टांडा का, वो काफी बड़ा है, वहां पर हम लोग जो हैं वो एक हमने वो ब्लैंकेट बैंक बना रखा है. तो जितने भी रोगी आते हैं, जो उनके अटेंडेंट्स आते हैं चाहे बड़ी दूर से, उनको इवनिंग को हम सभी को जो है वो उनको ब्लैंकेट्स देते हैं. जिनके पास बर्तन उनको हम बर्तन भी देते हैं, उनको साथ में खाना खाने के लिए कचरी भी देते हैं. और वो बेटी जिसका नाम इंदु है, वो बेटी बहुत ही एक सौम्य वृत्ति की है, और उसने एक ऑर्फन चाइल्ड को उसने अडॉप्ट कर रखा है जिसका कोई नहीं है. तो बच्चा हमारे लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनता है. हमारी को 25-30 लोगों की बहुत सुंदर टीम वहां पर जिला कांगड़ा में बनी है. मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे जिला कांगड़ा में आए तो हमें काफी अच्छा लगेगा इस बात के लिए, ताकि हम आपको दिखा सकें. यूथ की एक्टिविटीज के बारे में, इस बार भी हमारे 225 सेवा दल के लोग जो हैं जिला कांगड़ा के यहां पे इसमें काम कर रहे हैं. मेल मेंबर जो हैं
यूथ हैं वो लोग,
उसमें से 93 यूथ जो हैं वो इसमें सेवा में संलिप्त हैं पूरे के पूरे. एक बेटा भी वो 78 बच्चों को लेकर के आया था, वो ग्रुप लेकर के. यानी कि तो ये 10-12-15 लड़के ऐसे मिले हैं मेरे को जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत बहुत ज्यादा काम करते हैं. हम इसी प्रकार वो भाषण प्रतियोगिता करते हैं प्लस टू लेवल के बच्चों की. इन्होंने प्रोफेसर शिव कुमार जी का नाम लिया. मैं भी बड़े एक, क्योंकि वो 9.4 प्रोफेसर शिव कुमार जी के पास था, भगवान बाबा के साथ उनका पूर्ण परिचय था. ये हनुमान टेम्पल जो बना है इसके लिए उन्होंने पत्थर ढोए हैं. उन्होंने जब वो यहां शेड में रहते थे तो बाबा बोलते थे कि हिंदी में अनुवाद करना, प्रोफेसर शिव कुमार से जाकर शेड में मिलो, वो आपका अनुवाद कर देंगे. और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी. डॉक्टर श्याम सुंदर के साथ उनका बहुत ज्यादा सानिध्य रहा अपने आप में. दूसरा साथ में अभी भी हम जो सेशन लगाते हैं कॉन्फ्रेंसिस के बीच में, तो हम काफी बुद्धिजीवी लोगों को बुलाते हैं. अभी 7 जुलाई को डॉक्टर श्याम सुंदर जी और सीताराम मरडी जो ADGP हैं वो हिमाचल प्रदेश के, ये दोनों जो वक्ता के रूप में हमारे पास वहां पहुंचे हुए थे आकर के. हमने वहां पर 8 भवनों का निर्माण कर लिया है साई भजन हॉल के रूप में जिला कांगड़ा के बीच में. अभी 7 जुलाई को इनॉग्रेशन कराई है, बाकायदा हमने वहां पे पटेका लगाई है बड़ी सुंदर, उसमें भगवान सत्य साई बाबा बारू लेकर के साथ में बाबा का बर्थडे लिखा और साथ में मैंने 23/11/1926 नीचे डॉक्टर साहब का शांतनु जी का नाम लिखा, क्योंकि ये इन्होंने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया हुआ है। स्कूलों के बीच में यूनिफॉर्म्स बांटते हैं 18 से 25, बहुत बढ़िया बढ़िया वो बाबा का बर्थडे मनाते हैं, हर जगह झांकियां निकलेंगी और बच्चों को वर्दी भी दी जाएगी, शूज भी दिए जाते हैं, नयन सेवा होती है। इवन वो हमारे जो जेल है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, हर सेकंड सैटरडे को वहां पर भजन होता है, उनको हम फल बांटते हैं, वहां हम यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं। पीछे भी हमने 108 हवन कुंड बना करके जाप किया था, और वो जाप जो ओम नमः शिवाय का था, हम बाबा की सीढ़ी लेकर के बाबा को बोलते हुए साथ में वो औतियां डाल रहे थे। तो ऐसी कुछ हमने वो तीनों जो हमारी जो सेवा गतिविधियां हैं स्पिरिचुअल जो है वो भी एजुकेशन वाली है, साथ में ये हम पूरे का पूरा चलाने का प्रयास करते हैं। मैं चाहूंगा कि बाबा मेरे को दीर्घायु निरोगी कायना, ताकि मैं और ज्यादा काम जो है अपने मन से मैं लगा करके कर सकूं, ये मेरे मन की इच्छा। आज मैं यही मत्था टेकूंगा भगवान के चरणों में जाकर के कि बाबा अगले साल मेरे को फिर आपने जरूर,
भगवान ऐसा ही करे तथास्तु। हम भी ऐसा ही कहेंगे। आपकी सारी टीम और जितने भी कांगड़ा जिले के और हिमाचल के भक्त हैं, भगवान उन्हें शक्ति हिम्मत और दीर्घायु दें।
ठीक है, और डॉक्टर शांतनु का आशीर्वाद हमें ऐसा ही मिलता रहे। ओम श्री साईराम।
साईराम जी।
Saram, dear listeners, so that was Mr. Sesh Bhushan, the district president of Sai organization of the district Kangda at Himachal Pradesh, speaking to us. So he said in the conversation that he has been coming to Prashanti Nilayam for Prashanti Seva since the year 1992. And further in the conversation, he mentioned the service rendered by the state president of Sai organization of Himachal Pradesh, Mr. Professor Shyam Sundar. It seems Professor Shyam Sundar used to go in a scooter on the hilly terrains of Himachal Pradesh and spread the message of Bhagwan Baba. So they have adopted 8 schools on the lines of Swami's teachings and conduct medical camps regularly. They have set up camps for cataract operations, and on Aradhana Divas 24th of April this year, youth wing of the Sai organization of Himachal Pradesh conducted blood donation camps and collected 55 units of blood. Further in the conversation, Mr. Sesh Bhushan said that in Tanda Medical College at Himachal Pradesh, they have something called blanket bank and provide blankets and utensils to attendants of patients. And it seems this time, for Prashanti Seva last month, 250 youth from Kangra district had come here for Prashanti Seva. In Kangra district, they constructed 8 bhajan halls, and in prisons, they conduct bhajans every second Saturday. So, dear listeners, till now you heard few of the Sevadal members speaking to us about their experience of being a part in the part of Prashanti Seva here at Prashanti Nilayam, and also about the various service activities that they have been doing back home at Himachal Pradesh. So this is the segment Service Love in Action, and I'm Raghu from Team Radio Sai, and the time right now here at studio is 11:45 a.m. Well, dear listeners, Swami always gives lot of importance for rendering selfless service. I would like to narrate an incident. It seems once Swami called few youth from Hyderabad for an interview. After the interview, the youth were going out. Then they saw few drops of water on the floor, so one of the youth took a handkerchief and wanted to wipe off the drop of water. They thought that it must be somebody's sweat. In fact, it was somebody's sweat, and Swami saw this act, and Swami immediately said, Vaddu Bangaru Danini Turcha Vaddu Pavitramaina Ganga Jalamura Idi Seva Chesi Vachina Variki Anta Viluva. That day we understand how God values even the sweat of someone who has rendered service. In fact, what Swami said was, Swami asked the person not to clean the sweat with his kerchief, saying that those sweat, drops of sweat, were like sacred waters of Ganges, since the value of those who have done selfless service is very high. So this is the importance that Swami gives for those who do selfless service, and inspired by this, devotees of Bhagwan everywhere undertake service activities in whatever capacity they can, wherever they are. And in this segment, dear listeners, we try to capture these service activities. So, taking the show forward, let's listen to an episode of our radio series, Service in the Name of Sai. So, this is a new episode of this series.
Across every state of India, across 125 countries, across political, religious, racial, geographic and linguistic divide, across social and cultural barriers, what compels millions to step forward and reach out to complete strangers in need? Since 1940, when the 14-year-old Satya declared his divine mission, a salient revolution has emerged from a heart that preaches only one language, that of unconditional love. Through his massive service projects, Bhagwan Baba has redefined spirituality as social activism, responsible charity, and conscientious citizenship. Be it a service project in remote Andhra Pradesh or at a slum in Zimbabwe, volunteers from all backgrounds are transforming our world by serving in the name of Sai.
Dear listeners, welcome to the Radio Sai series, Serving in the Name of Sai. In this program, we bring you stories of the service activities by Sai volunteers across India and the world. Today's segment features a Seva project by the Satya Sai Volunteers of Indonesia.
Every difficult situation and trouble that we face in life reminds us of an eternal lesson, and that is, God is our only true companion and refuge at all times. Bhagwan Baba says, quote, God is the hero while the world is a zero. So you should make friendship with that hero. It is only the eternal nature of divine love, which is blemishless, selfless and pure, which can stand the test of true friendship. When you enjoy the proximity of such a friend, you will be free from fear even in the face of insurmountable difficulties. Unquote. Thousands of Indonesians had such an experience. After a strong earthquake rattled their homes and lives on the island of Java, Indonesia, on the 27th of May, 2006. They called out to God to save them, and God did.
It was 5:50 a.m. on 27th May, 2006, and many in the Indonesian city of Yogyakarta were peacefully asleep. 25 kilometers away in the Indian Ocean, an earthquake of 6.2 magnitude occurred 10 kilometers deep in the seabed and shook the whole of central Java, including Yogyakarta. At least 5,700 people were killed and over 36,000 were injured. The Bantul Plain in the city suffered the highest losses. Over 3,500 people were killed here and another 15,000 were injured. Nearly 84,000 houses were destroyed completely and over 3 lakh homes were damaged.
The net outcome of nature's fury that barely lasted a few seconds was enormous. An estimated 500,000 people in the Bantul Plain were rendered homeless, all in a few seconds. The World Bank projected the financial damage at a massive $3 billion, much higher than the losses incurred in the earthquakes of Gujarat and Pakistan in 2001 and 5 respectively. Suddenly, thousands of Javanese were homeless, sitting in the midst of crumbled houses, injured families and scattered belongings. They did not know what to do. They were too shell-shocked to do anything but call out to God. And God did send His messengers to rescue them. Eleven-year-old Tita and Bantul in Central Java, Indonesia, recalls the day.
I was very sad and frightened when the earthquake struck. My home was no longer standing. I could see only planks of wood here and there. There was no food or water. My family was starving and no one was helping us. Then suddenly, I became so happy when the people sent by Sai Baba came to help us. They gave us rice, towels, biscuits, milk, soap and clothes. I felt that God had listened to my prayer. Now we are no longer alone.
Most of the survivors had suffered serious to fatal injuries. Many of them had been left handicapped, many orphaned, and most of them were starving and homeless. They needed comfort, love and solace. And immediately they wanted food, shelter and self-confidence to rebuild their lives.
Seeing their plight, hundreds of Sai devotees from Indonesia, especially from areas surrounding Java, immediately met and planned to reach out to the victims. A day after the disaster, 4 teams of volunteers, including senior office bearers of the Indonesian Sai organization, visited the affected areas to assess the situation and plan the service project. They first visited Dr. Sarjito Hospital in Yogyakarta and Kakra Husada Hospital in Clayton, where most of the injured had been admitted, to find out what they needed and what service to offer.
Due to the unexpected disaster, the two hospitals needed huge supplies of medicines and first aid material. The doctors and other staff were also overburdened as the number of injured was rising. So, the Satya Sai organization decided to supply medicines and also set up medical camps where devotee doctors would provide free medical aid and medicines. The Sevadals decided to work on a priority basis. They would feed the starving, give medical aid to the injured, provide shelter to the homeless, and clothes to those who had lost their belongings.
Boxes of medicines were procured and distributed to the two hospitals, including thousands of antibiotic doses, syringes, bandages and other necessary items. They also distributed food, clothes and stoves to the people in the affected areas. The organization donated thousands of doses of vital injections, needles, various essential medicines and many boxes of bandages, gloves and other medical supplies as needed by the hospital and medical teams.
On the third day, the Sai volunteers distributed emergency supplies such as tents and hundreds of items of clothing to the victims. On the fourth day, 3 truckloads of rice, water, clothes and other essential items were served to the victims. A team of 10 Sai youth set up temporary kitchens in various places in Java to feed the hundreds of distressed people. Within a few hours of erecting the tents, the public kitchens were operational and began feeding thousands of starved people.
In a short while, 3 hygienic public kitchens were set up in the areas of Klaten, Imogiri and Unung Silik in Java. These public kitchens served food to every hungry person in the areas for over 1 month. Rice, pulses and fresh vegetables were supplied to the base camp daily from the Sai Center in Yogyakarta. The Sevadals, with the help of the local villagers, worked round the clock and served 3 meals to over 2,050 people every day.
Bibi, a 7-year-old girl from Bantur, the worst affected district in Java, expressed her innocent and honest feelings.
I was very scared and I cried. Our house had fallen and it was now just dust. My parents took my sister and me to the camp. I was very hungry and some people gave us milk. My mother made me drink it and I felt much better. Now I want to go back to school to play with my friends.
Setting up of stationary medical camps would not be helpful as many were seriously injured. Therefore, initially, two mobile medical teams of Sai volunteers went from house to house to treat the injured. Over the next few days, 6 medical teams were working in the area to treat the injured. Within 15 days, they had treated at least 1,070 affected victims in the area.
People had suffered injuries as they fled from crashing houses and buildings. Some had stamped on sharp edges, while many had been trapped under falling concrete. With so many injured, the work was endless. In the span of just a few days of the seva, nearly 9,000 kilograms of rice was distributed. The volunteers gave out stuffs, boxes of towels, soaps, mosquito repellents, lanterns, cookingware, toys and writing material for children, besides many other essential household items.
Thousands of clothes for men, women and children were distributed in an organized manner. A textile company run by a Sai devotee dispatched 10,000 pieces of clothing and 2,500 blankets for the needy. The organization gave out over hundreds of cartons of milk boxes, biscuit packets, baby food, and also beverages, including tea and coffee.
The Sai volunteers also helped to rebuild houses in many villages. They supplied construction tools and material to build 20 brick furnaces that would help to build many homes. Many sevadals also helped the villagers to rebuild their houses. As a pilot project to inspire the villagers, the Sai organization in Indonesia decided to completely build and set up 9 houses in the district of Bantul. For the rest, the organization supplied construction material and also helped to construct the houses. The guiding factor of the entire operation was to dispense Sai's boundless love in an organized and systematic manner.
The Sai devotees also gave the much needed emotional support to the traumatized. Volunteers patiently sat with the victims and listened to their accounts of personal suffering. They played with their children and also conducted programs to enthuse and encourage the affected people. They sang songs and counseled them with Swami's teachings to heal their emotional wounds and uplift their spirits. This is what 10-year-old Christian of Bantul shared.
I was very scared after the earthquake. I lost my friends and my father brought me to the refugee camp set up by the Sai organization. Here, I was reunited with my aunt, uncle and old friends. I am so happy to be with them and I can play again with my friends. I like the classes the Sai volunteers conduct, the songs they sing and the gifts they have given us.
And here is another 12-year-old Heaven from Bantul relating how God saved them that night.
I was shocked when the earthquake struck. Everybody ran helter-skelter and everything was destroyed in a split second. People shouted out of panic. On the first day, we went without food and shelter. Like us, many other families had no roof and it rained heavily that night. I prayed to God to help us. The next morning, we did not know where to go or what to eat. But then, Sai organization came and gave us some milk, noodles and also provided us with tents. Their doctors took care of our patients. We are happy because the Sai youth and devotees played games with us. They sang songs with us. They also gave us books, pencils and rubbers.
The victims of the earthquake called out to God as they realized that He was their only refuge. The Sai volunteers, as messengers of Bhagwan, responded to the call of service with a spirit of devotion and served the affected people as an offering to God, the indweller of every heart. Bhagwan had given them an opportunity, and the volunteers served Him in every form they saw in Java. In a discourse delivered in 1981, Bhagwan said, quote, "Offer service to someone in need with a full heart and experience the bliss that results. It need not be something big. It can be a small act, unnoticed by others. But it has to be done to please the God within you and in the other person." Unquote.
Trials and troubles can bring out the best in us if we see them as opportunities for self-growth. We must consider the obstacles in our life as passing clouds and use them to reaffirm our faith in God, as did the people of Java, who lost everything in a trice but gained their faith in God and the goodness of humanity in its aftermath. They loved the Lord in the truest sense and sanctified their lives by serving in the name of Sai.
Sai Ram, you are tuned to Asia Stream of Radio Sai Global Harmony, bringing you the message of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. And this is a segment, Service Love in Action, and I'm Raghu from Team Radio Sai. Well, dear listeners, till now you heard an episode of our radio series, Serving in the Name of Sai, featuring a Seva activity in Indonesia. Well, this is an audio documentary. In fact, there are many more such audio documentaries in this segment, Serving in the Name of Sai, and you can download them from our website, radiosai.org, and listen to them at your leisure. Well, the time right now in our studio is 12:05, and it's a quite pleasant afternoon here at Prashantinilayam Ashram. So for the next 25 minutes, that is till 12:30, before you join Prem and Arvind for today's afternoon satsang, I'll be playing for you a list of Sai bhajans sung by Brother Ajnesh. So I sign off for today, but I'll be reciting a poem before I sign off. So the poem is written by James Henry Lee Hunt, and it's Abu bin Adam. So the poem goes like this. Abu bin Adam, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. Exceeding peace made Ben Adam bold, and to the presence in the room he said, "What writest thou?" The vision raised its head, and with a look made all of sweet accord, answered, "The names of those who loved the Lord." "And is mine one?" said Abu. "Nay, not so," replied the angel. Abu spoke more low, but cheerily still, and said, "I pray thee then, write me as one that loves his fellow men." The angel wrote and vanished. The next night it came again with a great waking light, and showed the names whom love of God had blessed, and lo, Ben Adam's name led all the rest. So this was the immortal poem by James Henry Lee Hunt, Abu bin Adam. And this poem holds a very strong and profound message for all of us. The poem speaks about a simple person, Abu bin Adam, who sees an angel in his room recording the names of all the people who loved God. When Abu asks the angel about his name in the list, the angel replies that it is nowhere on the list. Abu never prays to God, though he always loves and serves his fellow men with all rigor, vigor and vitality. The next night, Abu sees the same angel writing another list, the names of those whom God loved. Abu's name topped the list. So you see, Abu just loved and served his fellow men, and service is something that is very close to God's heart. Swami has always stressed on the fact that hands which help are holier than lips that pray. So dear listeners, with this poem and with these words of Swami, that hands that help are holier than lips that pray, I sign off for today, and for the next 25 minutes or so, as I told, I'll be playing for you a list of bhajans sung by Brother Ajnesh. So placing this segment at Bhagwan's lotus feet, I take your leave and I'll meet again next Thursday. Jai Sai Ram.
मैं क्या जानू तेरी लीला। Hey, not a vara, hey, not a vara, nanda. Sagara Karuna Kara, ಶಿವ ಶಂಕರ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಶಿವ ಶಂಕರ 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 ಶಂಕರ.